बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना दीरवन चारी, यमुना दीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही बड़ा अवसर है श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव का। तो आज हम श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में उनकी महिमा गुणगान करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आकाश अनंत ताते यैछे पक्षी गण, यार यैछे शक्ति ता करे आरोहण। तो कहते हैं कि जैसे कि जो आकाश है वो तो अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन जितना कोई पक्षी है उसकी जितनी क्षमता है उतना वो उड़ सकता है, जितना ऊपर उड़ना है उड़ सकता है, हर एक की अपनी क्षमता के अनुसार। तो वैसे ही हम नित्यानंद प्रभु के गुण अनंत अपार है, लेकिन हम केवल जितनी अपनी क्षमता है उतना ही उसको समझ सकते हैं, वो भी वैष्णव की और आचार्यों की कृपा से। तो आज ही हम श्लोक पढ़ेंगे। व्रजेन्द्र नंदन जय शचि सुत हईलो से बलराम हईलो निताय। व्रजेन्द्र नंदन जय शचि सुत हईलो से बलराम हईलो निताय। दीनहीन जत छिल हरि नामे उद्धरिल तार साक्षी जगाई मधाय। दीनहीन जत छिल हरि नामे उद्धरिल तार साक्षी जगाई मधाय।
कोई एक जन दोहरा सकते हैं इसको?
वजेंद्र नंदन जय सचि सुत हईल से बलराम हईल निताय।
वजेंद्र नंदन जय सचि सुत हईल से बलराम हईल निताय।
दीनहीन जत छिल हरि नाम उद्धारिल तार साक्षी जगाई मधाय।
दीनहीन जत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई मधाय।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु कौन है। तो सबसे पहले बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में ये कह के गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी प्रकार के जो अपर धर्म है उनका त्याग करके केवल परो धर्म का पालन करो। वो पर धर्म क्या है? यतो भक्ति रधोक्षजे, हाँ, भगवान की अहैतु की अप्रतिहता भक्ति, यही हमारे पूरे सर्व जीवों का धर्म है। तो वो धर्म को स्वीकारने के लिए कहा, लेकिन कलयुग के जीव कितने मंद हैं कि वो समझ नहीं पाए कि भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ, वही भगवद्गीता के ऊपर इतने सारे विविध लोगों ने अपनी अपनी दिमाग की क्या करके बत्ती जलाकर अलग अलग अपना 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 टीका लिख दिया कि पूरा उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो वही भगवान श्री कृष्ण वापस उनको आना पड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब भगवान स्वयं आते हैं तो उनके नित्य पार्षद उनके साथ आते ही हैं। परसों ही हमने देखा राज्यपाल यहाँ आए थे तो उनके साथ कितने पुलिस आ गए थे, 350 पुलिस लोग इधर आ गए थे। तो कोई ऐसे भगवान जब स्वयं आते हैं तो उनके पार्षद भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो बलराम जी है वो कृष्ण के कौन है? स्वयं साक्षात द्वितीय स्वरूप कहते हैं, तो पहले विस्तारित रूप है। तो ये नित्यानंद प्रभु भी जब भगवान कृष्ण व्रजेंद्र नंदन होइलो जई, हाँ, सचिसुत होइलो सही, वही सचिसुत मतलब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो बलराम होइलो निताय। बलराम जी किसके रूप में आते हैं? तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के दो कार्य हैं। तो कौन है? तो सर्व जीवों के लिए वो कौन है? आदि गुरु है। आदि गुरु मतलब सभी गुरुओं के गुरु। तो एक कार्य है बलराम जी का कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण उनकी लीलाओं को, बलराम जी कौन है? तो संधिनी शक्ति के संधिनी शक्ति के स्रोत हैं। तो किन दो चीजों में संधि कर रहे हैं वो? संधि मतलब संधिनी मतलब मिलाना, जैसे हम बोलते हैं संधि हो गई, जैसे संस्कृत में भी दो शब्दों की संधि हो जाती है, तो वैसे किन की संधि करा रहे हैं? एक कार्य है श्री राधा राधा रानी और कृष्ण उनकी संधि कराना, उनका मिलन कराने के लिए जो जो आवश्यक है। हाँ, पूरा वृंदावन धाम ही स्वयं श्री बलराम जी का स्वरूप है। और दूसरा कार्य क्या क्या है बलराम जी का? तो जीवों को कृष्ण के साथ संधि करा देना। सभी जीव, हम सभी जीव हैं, हमारा भगवान के साथ वापस जो हम रिश्ता भूल चुके हैं उसको वापस भगवान के साथ जोड़ देना, ये भी संदीनी शक्ति का कार्य है। तो ये बलराम जी स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण को हमसे मिलाने के लिए और हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए। तो ये दो कार्य हैं उनके। तो बलराम जी के बारे में कह रहे हैं कि बलराम जी कैसे कैसे सेवा करते हैं भगवान की। तो कह रहे हैं सर्वरूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद। सर्वरूप से जो जो रूप संभव है उस सर्वरूप से बलराम जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। सेई बलराम गौर संगे, सेई बलराम गौर संगे नित्यानंद। और वही बलराम जी जो कृष्ण की अनेक अनेक रूप में सेवा करते हैं, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य र काम कहते हैं, महाप्रभु की जो इच्छा है वो सब नित्यानंद प्रभु पूर्ण करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पांच अलग अलग भाव है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, इन सब में बलराम जी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। शांत रूप में कैसे सेवा कर रहे हैं, निवास शय्यासन पादुकांश को उपादान वर्षा तप वारणादि भी शरीर भेद स्तव शेषताम गतई यथोचितम शेष इतीर्यते जना। भगवान को शेष कहा गया है। जब भी कोई मंदिर का जब निर्माण होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले शेष का प्रतिष्ठान होता है, जमीन में संस्कार कर उसमें अनंत शेष को क्या किया जाता है, प्रस्थापित किया जाता है। वो स्वयं बलराम जी के ही अंश है। और यही नहीं है, जब भी देवकी भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे रही है उससे पहले कौन प्रतिष्ठित हो जाते हैं देवकी के गर्भ में, बलराम जी जिनको संकर्षण भी कहा गया है, वो पहले प्रतिष्ठित होकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे कहते हैं कि पहले बलराम जी उपस्थित होते हैं देवकी के गर्भ में। तो बलराम जी कौन है, कृष्ण की सेवा। जब भी कृष्ण की सेवा उपस्थित होती है तो उसके पश्चात कृष्ण उपस्थित होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। अब पहले भगवान की सेवा होते फिर भगवान आते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये निवास शैया आसन, भगवान का निवास मतलब आध्यात्मिक जगत पूरा बलराम जी का स्वरूप है। उतना ही नहीं, शैया भगवान जिस पर सोते हैं वो भी बलराम जी का एक रूप है। एक मूर्ति धारण करके बलराम जी ही सेवा कर रहे हैं। आसन भगवान जिस पर बैठते हैं वो भी बलराम जी हैं। पादुका भगवान के चप्पल भी भगवान जी हैं, बलराम जी हैं। तो सोचो सर से लेके पैर तक जो जो अनेक अनेक आभूषण पहने हैं वो भी बलराम जी का ही स्वरूप है। तो अंश को भगवान का वस्त्र, उपादान भगवान का सोने का जो शैया के लिए जो क्या कहते हैं तकिया, वो भी बलराम जी है। उपादान वर्षा तप, अगर भगवान को धूप लगती है तो ऊपर से छाता भी कौन है, बलराम जी ही है। वर्षा तप वारण आदि भी शरीर भेदे स्तव शेषताम गते। तो जो जो अनेक अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं बलराम जी। तो ये हो गया शांत रूप में, और हो गया दास्य सख्य और वात्सल्य रूप में भी भगवान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये मैंने हाल ही में सुना था कि ये कथा हमने राधा रानी के बारे में सुनी थी, लेकिन ये कथा बलराम जी के लिए भी है। बलराम जी का जब भी जन्म होता है बलराम पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, तो अगले आठ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि एक साल बाद, कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण के बाद बलराम जी ऐसा कहते, तो लेकिन जीव गोस्वामी संदर्भ में कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब गलत है। बलराम जी श्रावणी पूर्णिमा को बलराम जी, और उसके पश्चात 8 दिन बाद कृष्णाष्टमी को भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए गोकुल में। तो कह रहे हैं कि बलराम जी 8 दिन आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। तो रोहिणी माता परेशान है कि क्यों बलराम जी आंख नहीं खोल रहे। वैसे आज नित्यानंद त्रयोदशी है, बलराम पूर्णिमा नहीं है, लेकिन हम हाँ नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब उनको देखने के लिए बलराम जी सबसे पहले आंखें खोलते हैं, और 8 दिन पूरा रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं। लेकिन जब यशोदा के गोद में जब रखते हैं बलराम जी को, तो फिर हंसते हैं बलराम जी, क्योंकि यशोदा के गर्भ में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यह दास्य साख्य वात्सल्य के रूप में। फिर माधुर्य के रूप में भी बलराम जी विस्तारित होते हैं अनंग मंजरी के रूप में। अनंग मंजरी राधा रानी की कौन है? छोटी बहन है। वो भी बलराम जी का एक रूप है, बलराम जी की ही शक्ति है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ये स्वयं बलराम जी हैं, और वो एक चक्र धाम में त्रयोदशी के दिन, माघ त्रयोदशी में उनका आविर्भाव हो जाता है। तो उनके पिताजी का नाम है हड़ाई पंडित या मुकुंद पंडित, और उनकी माता का नाम है पद्मावती। तो कहते हैं पद्मावती और हड़ाई पंडित कौन है? स्वयं वसुदेव और रोहिणी है, जो बलराम जी के माता पिता हैं। और एक भी आचार्य कहते हैं कि पद्मावती सुमित्रा है, और मुकुंद पंडित है, हड़ाई पंडित हैं, वो दशरथ हैं, और उनके पुत्र नित्यानंद प्रभु, वो बलराम जी भी है, लक्ष्मण भी है, अनंत शेष भी है, ऑल इन वन। तो इस प्रकार राड देश में नित्यानंद प्रभु आविर्भूत होने से पहले वर्षा ही नहीं हो रही थी बहुत सालों के लिए, अनाज भी नहीं उग रहा था। जैसे ही नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, सब जगह पे फल फूल अनाज धान्य और अनेक प्रकार की नैसर्गिक सुविधाएं वहां पे उत्पन्न होने लगी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के पश्चात। और कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु बचपन से, एक लीला में बस आपको कहूंगा, बचपन से कृष्ण लीला में इतने आविष्ट होते थे, इतने आविष्ट होते थे कि बाकी कुछ उनको ध्यान में नहीं रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण की जो दशम स्कंदों में सारी लीलाएं हैं, वो सारी लीलाएं कभी कभी वो स्वयं गोप बनते थे, कभी कृष्ण बनते थे, कभी गोपी बनते थे, अलग अलग रूप में कृष्ण लीला को आस्वादन करते थे। पूतना की लीला में वो स्वयं पूतना बने। कभी कभी बहुत बार हमको ड्रामा में जब रोल करना होता है, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं रावण नहीं बनूंगा, या फिर मैं पूतना नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु अनेक अनेक प्रकार से, क्योंकि वो क्या होता है उसके बाद बहुत दिनों तक उसको बाकी भक्त सताते हैं कि अरे ये तो कंस है, ये तो कंस है। कभी कभी वो भक्त भी खुद को कंस समझने लगता है। हमारे IIT में एक बार प्रोग्राम हुआ था, गौराम प्रभु ने किन भक्तों को बताया था कि आप ये प्रोग्राम करो, तो उन्होंने चाणूर मुष्टिक और कंस का कैसे वध होता है, भगवान कृष्ण कैसे उनका वध करते हैं, वो लीला की थी। और लीला होने के बाद कृष्ण की आरती हो रही थी, तो वहां पे जो कंस था वो कहा कि मैं आरती कर सकता हूँ क्या? मैं तो कंस के वेश में हूँ। तो गौराम प्रभु बोले अभी ड्रामा से बाहर आ जाओ। आप अभी भक्त हो। तो इस प्रकार से कभी पूतना का रोल किया नित्यानंद प्रभु ने। तो कभी जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए थे वृंदावन में, तो गोपियों के भूमिका में वो बहुत बहुत रोए, बहुत रोए। सभी जो उनके साथी थे वो सोच रहे थे अरे इतना क्यों रो रहे हैं, ये तो ड्रामा है, इसमें तो ऐसा क्या लगा के रोते हैं, ग्लिसरीन लगा के रोते हैं। हम वैष्णव कांदा नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे सच में नित्यानंद प्रभु रो रहे इतना, तो ऐसा कैसे? तो गोपियों के भाव के में आविष्ट होकर रो रहे। और एक बार रामायण की लीला करने का मन किया नित्यानंद प्रभु को, तो स्वयं वो लक्ष्मण बने, इंद्रजीत उनके एक साथी तो इंद्रजीत बने। तो इंद्रजीत को परास्त करने के बाद रावण जो बने थे वो स्वयं क्या लेकर, कमल का एक फूल लेकर, वो उनका अस्त्र था। वो लेकर आए और लक्ष्मण को कहे आज तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते।
और ऐसा कह के रावण ने क्या किया, वो कमल का फूल नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण बने हुए उनके ऊपर फेंका, और वो फेंका तो ऐसे गिर गए जैसे वज्र का आघात होकर जैसे गिर जाता है वैसे नित्यानंद प्रभु गिर गए। और सभी जो साथी हैं हाँ वो उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे क्या हुआ इनको, क्या हो गया, हाँ ये नाटक करते करते अचानक क्या हो गया इनको, हाँ पूरे बेहोश हो गए, उनकी सांस भी बंद हो गई। तो कोई बोले अरे हाँ कोई ड्रामा करता है, बेहोश होने का नाटक करता है, आऊ आवाज करता है लेकिन उसकी सांस नहीं बंद हो सकती, हृदय की धड़कन भी बंद नहीं हो सकती, लेकिन इनकी तो हाँ कोई होश भी नहीं है, इनके कोई जानकारी भी नहीं है कैसे क्या हुआ कैसे हो गया। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए कि अरे क्या हुआ नित्यानंद, हाँ निताई को क्या हो गया। फिर बाद में भाग भाग के उनके माता पिता हाँ मुकुंद पंडित और पद्मावती भाग भाग के उधर आ गए, बोले अरे हमारे बेटे को क्या हो गया। तो सभी साथियों ने कह रहे हम तो एक नाटक कर रहे थे उसमें हाँ रावण ने एक अस्त्र छोड़ा उसकी वजह से हाँ लक्ष्मण की भूमिका कर रहे थे तो वो बेहोश हो गए। तो उसमें एक साथी को याद आ गया कि अरे लगता है ये ड्रामा खत्म होगा तो ही नित्यानंद प्रभु जग जाएंगे, हाँ ये ड्रामा का पूरा चलना चाहिए ये ड्रामा। तो उसमें जो हनुमान जी बने थे हाँ वो साथी चले जाते हैं एक जगह को हिमालय बनाया था उन्होंने उसकी ओर चले जाते हैं, वहाँ से संजीवनी उठा कर लेकर आते हैं और हाँ लक्ष्मण जो नित्यानंद प्रभु हैं उनके उनको सुंघाते हैं वो संजीवनी। तो अचानक से हाँ लक्ष्मण जी राम राम बोल के जग जाते हैं नित्यानंद प्रभु। तो सब लोग कह रहे हैं अरे क्या हो गया निताई, हाँ अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो कह रहे कि ये तो मेरी हाँ लीलाएं हैं। तो मुकुंद पंडित उनको कहते हैं अरे मैंने तो तुमको ये सब लीलाएं कभी बताई नहीं थी, तुमको इतना डिटेल में लीला कैसे मालूम है सारी। तो नित्यानंद प्रभु हंस के कहे हाँ क्योंकि पिताजी ये तो सारी मेरी लीला है तो फिर भी वो समझे नहीं। तो ये है नित्यानंद प्रभु का बचपन जो पूरा कृष्ण कथा कृष्ण भावना भावित होकर उनका पूरा बचपन गया। तो हम भी जो ड्रामा करते हैं हाँ वो इसलिए क्योंकि हमको भी भगवान की कथाएं याद रहें। तो यही नित्यानंद प्रभु जो है हम तीन उनकी लीलाएं आज चर्चा करने का विचार किया था। ये हुआ भगवान की सेवा कैसे करते हैं, अभी हो गया जीवों का उद्धार कैसे करते हैं, हमारे काम की बात हम अभी देखते हैं हमारे मतलब की बात तो कहते हैं यहाँ पे श्लोक लिखा है दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो। कलयुग में ज्यादातर लोग हाँ कैसे हैं दीनहीन, आध्यात्मिकता उनकी बहुत निम्न स्तर की है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता कहते हैं कि हम मंद गति हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हमको अच्छे से समझ में नहीं आता एक बार बताने से तीन बार बताने से या 300 बार बताने से भी। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कैसे उनका उद्धार करते हैं दीनहीन जत छलो हरिनामे उद्धारी लो, हरिनाम सब लोग ले सकते हैं। तार साक्षी जगाई माधाई, तो जगाई मधाई का उद्धार उन्होंने किया। मैं संक्षेप में कथा कहूंगा कि वो जगाई मधाई जो है वो अत्यंत नीच अधम जो चारों विशेषण इस्तेमाल करते हैं भगवान, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आशेता, चारों उनमें मौजूद थे। पूरा दिन पीकर पड़े रहते थे वो और दिन भर शैतानी करते थे, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे, ब्राह्मणों को परेशान करते थे, मांस खाते थे, दारू पीते थे, जो आप सब सोच सकते हैं वो सब कुछ करते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा कि अगर ये दो बदमाश अगर भक्त बन गए तो फिर पूरी दुनिया देखेगी जानेगी कि ये सच में चैतन्य महाप्रभु की क्या महिमा है, तो इनको हम भक्त बनाएंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु आपके दिमाग में ऐसे उठपटांग विचार आते हैं जिसके बाद में मुझे हमेशा इसमें मैं क्या आ जाता हूँ इसके चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। कभी आप वो यवन की कन्या का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझसे शादी करोगी तो वो लड़की घबरा के घर चली जाती है, उसके परिवार वाले आ जाते हैं हाथ में लाठी लेकर, और आप तो तेज हो, आप तो भाग जाते हैं। फिर लोग मुझे पकड़ते हैं, मुझे कहते हैं अरे क्या तुम्हारे वो साथी क्या कह रहे हैं देखो। हाँ कभी हाँ किसी की गाय दिखी रास्ते में तो उधर ही दूध निकाल के पी जाते हैं आप, और फिर गाय की का जो मालिक है वो आ जाता है, कहता है कि अरे कौन मेरे गाय का दूध पी गया सारा। फिर आप तो भाग जाते हो, मैं ही हमेशा पीछे रह जाता हूँ, मुझे ही पकड़ लेते हैं। तो ये सारी आपकी लीलाएं हैं, लेकिन हाँ हमेशा मुझे उसका क्या बनना पड़ता है, प्यादा बनना पड़ता है आपका। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं 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 हाँ इनको हम भक्त बना के ही छोड़ेंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं जगाई मधाई को कि सुनो भाई, जगाई मधाई, हाँ आप हरिनाम क्यों नहीं लेते, हरिनाम से आपका उद्धार हो जाएगा। तो जगाई मधाई कहते हैं अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको उपदेश करने की, तो पत्थर लेके उनके पीछे भागते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों वहां से भागते हैं, ये भी उनकी लीला है। अभी नित्यानंद प्रभु उनके एक अंश के अंश के अंश अनंत शेष हैं, जिनके मुख से जो अग्नि बाहर निकलती है कल्पांत में, उससे सारे ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु वो रोल में नहीं है। तो यहाँ पे वो भागते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। और दूसरे दिन वापस नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि नहीं नहीं इनका उद्धार होना चाहिए। तो जगाई मधाई को कहते हैं कि भाई आप हरिनाम क्यों नहीं लेते। तो इस बार गुस्से में जगाई क्या करता है, या मधाई एक एक मटके का मटका लेकर नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंकता है। नित्यानंद प्रभु के सर पर वो मटका लग के उसमें से खून बहना चालू हो जाता है। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को समझ में आती है, तुरंत वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जोर से कहते हैं चक्र चक्र करके, सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ भी जाता है। तो वो देखकर जगाई मधाई डर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको साक्षात काल स्वरूप में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु के पैर पकड़ लेते हैं जगाई और कहते हैं कि मुझे हमें बचाइए हमें बचाइए, हम वापस ऐसा नहीं करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु को कि कृपया इनको आप हत्या मत, इनको इनका वध मत कीजिए। आप इस अवतार में आपका अस्त्र क्या है, हरिनाम संकीर्तन आपका अस्त्र है, तो उस अस्त्र से आप उनका अंदर के जो राक्षस का वध कीजिए, इनका वध मत कीजिए। तो मधाई कहते हैं, तो वो मधाई को कहते हैं मैं इसका वध करूंगा। जगाई ने बचाया नित्यानंद को, लेकिन इसने वार किया नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो नित्यानंद तो मधाई कहते हैं अरे हम दोनों एक जैसी हैं, हम दोनों में कुछ फर्क नहीं है, अगर उसको कृपा देते तो मुझे भी कृपा करके कृपा दीजिए करके। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दोनों को कृपा देते थे नित्यानंद प्रभु के कहने पर। तो ऐसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु हैं, जो सारे गुरुओं का क्या है, गुरु हैं। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कि कैसे वो मध्यस्थी का काम करते हैं, भगवान और हमारे बीच में एक मध्यस्थ बोल के काम करते हैं। हमारे जो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज, एक बार उनका ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन में उनको इंजेक्शन दे दिया जो भूल का, जिससे ट्रैंक्विलाइजर को क्या कहते हैं, बेहोशी का, एनास्थेशिया। हाँ तो उसके बाद वो 6 5 4 3 2 1 एक एक होने पर तमाल कृष्ण महाराज पूरे बेहोश हो जाते हैं, और उनका ऑपरेशन होने के बाद ही वो जग जाते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी स्वयं वहाँ पे आए हुए हैं उनको मिलने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज उनको कहते हैं प्रभुपाद मैंने एक सपना देखा, उसमें मैंने देखा कि सारे पुराने जो आचार्य हैं अपने पुरातन आचार्य, वो आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि कैसे प्रचार हो रहा है क्या हो रहा है। तो आप उनको बता रहे हैं कि ये सब कलयुग के जीव हैं, इनका कोई पात्रता नहीं है, केवल उनकी एक ही पात्रता है, क्या है कि उन्होंने मेरी शरण ली है, यही एक पात्रता है, इसलिए कृपा करके आप उनका उद्धार कर दीजिए, ऐसे पुरातन आचार्यों को वृंद को कह रहे हैं। तो तमल कृष्ण महाराज कहते हैं क्या ये सही है ये सपना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 100% सही है। आपको सच में कोई पात्रता नहीं है। हाँ, केवल आपने मेरा सहारा लिया है, इसलिए हाँ पुराने पुरातन आचार्य क्या कर रहे हैं, हमारा उद्धार कर रहे हैं। तो ऐसे अत्यंत पतित से पतित जीव के लिए भी प्रभुपाद की हृदय में करुणा थी। नर नारायण प्रभु बताते हैं उनके मेवरी में, स्मृति में, कि प्रभुपाद एक बार ऐसे चलते चलते जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलते चलते नरनारायण ऋषि को नरनारायण प्रभु की तरफ देखा और उनको बताया कि क्या तुम इसको देख सकते हो। तो नरनारायण प्रभु देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? तो जमीन पर एक चींटी चल रही थी। तो प्रभुपाद बोले, उसके लिए जप करो हरे कृष्ण जपो उसके लिए, हाँ उसका भी उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी हर छोटे जीव के लिए भी उनके मन में क्या थी, अनुकंपा थी। तो एक ऐसे बहुत बड़े कर्मी एक आ गए थे, सूट बूट पहन के, बहुत बड़े पदस्थ थे, तो पदाधिकारी थे, तो उनके मिलने के लिए आ गए थे अमेरिका में। हाँ, एकदम पॉलिश जूते और एकदम बड़े कार में से आ गए थे। तो प्रभुपाद जी उनको प्रचार करने की का प्रयास कर रहे थे कि कैसे ये जो चार नियमों का पालन करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था वो उस इन चीज़ों में, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में अवैध संग, नशापान, ये तो क्या है, रेगुलर है, ये तो सामान्य है, क्या है, दिनचर्या है ये दिनचर्या है। सुबह 7 बज गए, चलो इसका टाइम हो गया, चलो रात के 7 बज गए, चलो दारू पीने का समय हो गया तो ये उनकी दिनचर्या है। तो वो समझ नहीं पा रहा था, इतना उच्च शिक्षित होकर भी समझ नहीं पा रहा था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा इसको मैं अलग अलग तरीके से समझाया उसको, फिर वो हाँ हाँ कह रहा था, हाँ हाँ कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद को समझ में आ रहा था कि इसके दिमाग में नहीं घुस रहा है ये, शायद से वो हाँ बुद्धि से कह रहा है हाँ हाँ, लेकिन हृदय में उसके कुछ तत्वज्ञान गया नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऑर्डर किए कि हाँ इसके लिए महाप्रसाद लेकर आओ तुरंत, कुछ नहीं हुआ तो महाप्रसाद से उद्धार हो जाएगा इसका। तो वो महाप्रसाद लेकर आए और अपने भक्त तो बहुत ही अवधूत थे, तो वो हाँ गुलाब जामुन लेकर आ गए और उसके हाथ में उसको कहा कि हाथ में ले लो करके। तो हम अगर गुलाब जामुन, आपको कहा गया किसी को गुलाब जामुन दे दो तो आप कैसा देंगे, हाँ रस को निचोड़ के देंगे। हाँ उसने क्या किया, गुलाब जाम रस के साथ पूरा स्पून में जो आया वो पूरा ऐसा लेकर उसके हाथ में ऐसा डाल दिया तो पूरा हाथ में रस और रस के साथ गुलाब जामुन, ऐसा उसको समझ में नहीं आता, पहली बार ये आइटम खा रहा था कभी गुलाब जामुन खाया नहीं उसने, तो उसको खाना कैसा है, तो पूरा ऐसा करके गुलाब जामुन खाने लगा, उसके हाथ से रस गिरकर उसके महंगे सूट पर, कोट पर, सब पे गिरने लगा उसको समझ में नहीं आ रहा कैसा खाया जाए। आधा खा लिया उसने, आधा बचा लिया और कहा प्रभुपाद जी को, इसको मैं ना रात को खाऊंगा तो प्रभुपाद नहीं अभी खाओ करके कहा प्रभुपाद ने। तो उसने पूरा खा लिया और कहा कि अरे ऐसा मैं चीज कभी पूरे मेरे आयुष्य में मैंने कभी खाया नहीं है, मैं और एक लूंगा, मिलेगा क्या? प्रभुपाद बोले, लाओ और एक लेके आओ इसका शायद से ऐसे ही उद्धार होगा। तो भक्त और एक लेके आया और एक उसने ऐसे डाल दिया उसके हाथ में तो फिर बाद में वो सोचकर बोला कि इसको ना मैं रात को खाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले, रात को क्यों, अभी क्यों नहीं खा रहा? तो बोले, मैं रात को ना मैं थोड़ा रोज रम लेता हूँ, रम मतलब दारू, तो मैं दारू के साथ इसको मिला के खाऊंगा और मुझे थोड़ी सी अच्छा अनुभव आ जाएगा मुझे उसका। तो प्रभुपाद ने उसकी तरफ, नहीं नहीं दारू के साथ नहीं खाना है इसको, हाँ अभी खाओ इसको। तो फिर बोला, नहीं 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 अभी मेरा पेट भरा है, मैं बाद में खाऊंगा, ठीक है मैं दारू के साथ नहीं खाऊंगा, अलग से खाऊंगा, लेकिन हाँ बाद में खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है। फिर और उनका 15-20 मिनट उनके साथ वार्तालाप हुआ। फिर वो बोला कि स्वामी जी मैं अभी जाता हूँ। तो हाँ फिर प्रभुपाद बोले कि हाँ ठीक है हरे कृष्णा, और जाते जाते वापस उसको बोला, दारू के साथ मत खाना है इसको ये महाप्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। तो हंस के बोला, हाँ हाँ स्वामी जी दारू के साथ नहीं खाऊंगा इसको तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का इतना कृपा है। हाँ कि ये हाँ नित्यानंद प्रभु का कृपा क्या है कि पतित से पतित जीवों का भी उद्धार वो करना चाहते हैं। तो उसके पश्चात जो वैष्णव, जो शिष्य है, कनिष्ठ शिष्य है, जो अनेक जिनमें दोष हैं, अनेक कभी कभी गलतियां होती हैं, उसको भी नित्यानंद प्रभु कैसे क्षमा करते हैं उसका भी उदाहरण हम देखेंगे। तो काल कृष्ण दास उसको सेवा में नियुक्त किसने किया? श्री नित्यानंद प्रभु ने किया कि आप चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए जाएंगे, दक्षिण भारत यात्रा, तो आप उनका कमंडलू, उनका वस्त्र साथ में उसको ढोना, तो इस प्रकार से आप सेवा करते रहना उनकी। तो इस तो नित्यानंद प्रभु ने उनको अपॉइंट किया था सेवा में। तो बाद में पश्चात जब वो भट्टधारी लोग जो हैं वो अपना स्त्री धन दिखाकर काल कृष्णदास को क्या करते हैं, लुभाते हैं उसका मन। तो उसके पश्चात महाप्रभु स्वयं उनको छुड़ाते हैं, उसके शिखा को पकड़ के उसको खींच के आते हैं वो स्त्रियों के समाज से जो उनको लुभाना चाहते हैं। और बाद में जब वापस आते हैं पुरी में तो सबके सामने उसको ऐसा बताते हैं कि इसको मैं इधर लाके छोड़ दिया, मेरा कर्तव्य हो गया, अभी काल कृष्णदास जहां कहीं भी जाए मेरा उससे कुछ संबंध नहीं। तो काल कृष्णदास वहीं पे जोर जोर से रोने लगा। तो महाप्रभु बोले मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप जो करना है कर लो। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, युक्ति करके सोचते हैं कि पूरा जो दक्षिण भारत का यात्रा का साक्षी कौन है, ये महाप्रभु ने जो जो लीला किया उसके साक्षी हैं काल कृष्णदास हैं, तो इनके लिए भी एक सेवा है। तो कहते हैं कि महाप्रभु को कहते हैं कि एक व्यक्ति, कहते नहीं कि काल कृष्णदास को भेजेंगे, एक व्यक्ति को मैं भेजना चाहता हूं नवद्वीप धाम में जो सारे भक्तों को जाकर महाप्रभु की लीलाओं की वार्ता कहेगा। तो महाप्रभु को तो पता है कि किसको भेज रहे, लेकिन करते हैं, कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, हाँ ठीक है जो तुम्हारे मन में आए करो, मुझे मत बताओ। तो नित्यानंद प्रभु काल कृष्णदास को बहुत सारा प्रसाद उसके हाथ में देते हैं, बोलते हैं तुम्हारी सेवा है कि शची माता, अद्वैताचार्य, वो सब जो नवद्वीप शांतिपुर में है उनको प्रसाद दे दो और महाप्रभु की वार्ता उनको बता दो। तो इस प्रकार काल कृष्णदास गलतियां करके भी नित्यानंद प्रभु ने उसको सवारा सेवा का मौका दिया, वापस अवसर दिया। तो ये भी गुरु का एक महान कर्तव्य कि ऐसे नहीं कि शिष्यों का गलती इसलिए जानबूझ के करनी चाहिए, लेकिन अगर करता भी है तो गुरु उसको बचाते हैं। एक ऐसा एक भक्त थे अमेरिका में जिन्होंने संन्यास लिया था और उसके पश्चात काफ़ी दिनों के बाद माया के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, भक्ति भी छोड़ दी, कहीं जाकर रहने लगे। तो प्रभुपाद जी वो शहर को में जब आए तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये किधर है करके, तो भक्तों ने उसको बुला कर लाया। तो वो प्रभुपाद को देखते ही रोने लगा। प्रभुपाद ने उनको कहा क्या आप ये सेवा करोगे? तो वो कहा कि प्रभुपाद मुझे तो लगा कि आप मेरा त्याग कर दोगे इतना सब मैंने करने के बाद। तो जैसे महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग किया था वैसे आप मेरा भी त्याग करोगे ऐसा मुझे लगा। तो प्रभुपाद उन्होंने कहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन मैं तो एक उनका दासों का दास हूँ। हाँ मैं ऐसा छोटी गलतियों ऐसे गलतियों होने के बाद अगर शिष्यों को छोड़ दिया तो मैं प्रचार कैसे करूँगा, मुझे आपको सबकी ज़रूरत है। तो आप ये सेवा करो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको अनेक अनेक अवसर दे दिए। और एक जगह पे एक भक्त था वो पैसे का घोटाला कर रहा था, भगवान का दिया हुआ पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, खुद के निजी कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो उसको प्रभुपाद जी ने दंड किया और वो भक्त चला गया। तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को कह रहे थे कि मैं उसका त्याग कर दूंगा, उसको भूल जाऊंगा मैं, इतना बदमाश है कि भगवान की पैसे का इस्तेमाल खुद के उपयोग में कर रहा है। तो बाद में तमाल कृष्ण महाराज उनको कहें कि क्या प्रभुपाद आपको सब सच में उसको भूल जाओगे, उसका त्याग करोगे? तो प्रभुपाद ने 2 मिनट सोच के कहा कि नहीं, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, नित्यानंद प्रभु की कृपा अमर्याद है, ऐसा करके प्रभुपाद जी ने कहा। तो उसके पश्चात तीसरी हम लीला देखेंगे जिसमें उत्तम साधक को भी कैसे नित्यानंद प्रभु कृपा देते हैं। हमने देखा पतितों का कैसे कृपा देते हैं, गलतियां करने वाले वैष्णवों को कैसे कृपा देते हैं, और जो एकदम गंभीर साधक है, उत्तम साधक है, उनको भी कैसे कृपा देते हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी तो सिद्ध हैं, लेकिन गौर लीला में साधक का एक भूमिका कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बार उन्होंने घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो असफल हो रहे थे। तो क्या किया, वो नित्यानंद प्रभु के पास चले गए, और नित्यानंद प्रभु ने, प्रभु क्या पाणीहट्टी में एक वृक्ष के तले अपने गोप अपने अनुयायियों को साथ बैठे थे गंगा के तीर पर, और मानो ऐसा कि कोटि सूर्य साथ में उदय हो तो उनका कैसा प्रकाश होगा, वैसे नित्यानंद प्रभु का प्रकाश दिख रहा था। और वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी आकर दूर से ही दंडवत किए। सो नित्यानंद प्रभु के ने उनको देखकर कहा, अरे चोर, इतने दूर से दंडवत कर रहा है, चल इधर आ। ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर पैर रख दिए नित्यानंद प्रभु ने, और कहे आज तुमको मैं दंड दूंगा। हाँ, दूर से चोरी चोरी मुझे देख रहे थे। अभी चोरी का दंड यह है कि मेरे सारे वैष्णव गणों को क्या करो, चीड़ा दही इसका बंदोबस्त करो आप। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत सभी वैष्णवों के लिए उन्होंने चीड़ा दही और दूध दही का बंदोबस्त किया, और नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जब वो बांट रहे थे सबको, तभी आपने ध्यान से श्री चैतन्य महाप्रभु को उधर बुलाया। सो नित्यानंद प्रभु को अगर प्रसन्न है तो ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको मिल सकती है। सो चैतन्य महाप्रभु हर भक्त के इसमें हंडे में से एक एक अंजलि भरकर उन्होंने ये निकाला दही चिड़ा और महाप्रभु को खिलाया, और महाप्रभु ने ऐसे ही भक्तों का झूठा नित्यानंद प्रभु को खिलाया। तो इस तरीके से दोनों हास परिहास करते हुए नित्यानंद प्रभु बाद में जब संकीर्तन किए उसके पश्चात, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से उन्होंने देखा। और फिर दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का महाप्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया गया, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये पूरा सेवा होने के बाद नित्यानंद प्रभु को एक निवेदन किया। अधम पामर मोई जीव हीन जीवाधम मोर इच्छा है पाऊं चैतन्य चरण। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण पाऊं। बोलते इतनी बार मैं प्रयास किया लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। तुम्हार कृपा बिना केह चैतन्य ना पाए। ओ नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं पा सकता। तुम्ही कृपा कहले तारे अधम यह पाए, लेकिन आपने अगर कृपा किया तो कि अधम व्यक्ति भी उनको प्राप्त कर सकता है, ये आपका महिमा है। तो मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, मेरे सर पर पैर रखकर आप मेरे ऊपर प्रसाद कीजिए। निर्विघ्ने चैतन्य पाऊं करो आशीर्वाद, बिना किसी विघ्न के मैं चैतन्य महाप्रभु को पाऊं, ये आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसकर सबको कहे कि ये जो रघुनाथ दास है इसका ऐश्वर्य इंद्र के समान है, लेकिन फिर भी उसको इन सब इंद्रिय सुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। जिसको एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों के मधु को आस्वादन करने की लालसा उत्पन्न हुई है, एक बार जिसने चखा, उसको बाकी सब दुनिया की चीजें चाय कम पानी लगती है। तो इस प्रकार से ये रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर पैर रखकर नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद कहते हैं कि तुमने जो हमको पुलिन भोजन कराया है, मुझे तो यमुना की याद आ गई। मैं तो गोप जाति हूं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में कह रहे हैं, गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे आमी सुख पायनु यही पुलिन भोजन रंगे। तो इस प्रकार से संतुष्ट किया चैतन्य महाप्रभु, गौरांग स्वयं इधर आकर उन्होंने दधी चिड़ा भक्षण किया। बोले अभी चिंता मत करो, तोमा उद्धारित है गौर आईला अपने छुट्टी लो तोमारे तो विघ्नादि बंधने। तो कह रहे हैं कि आपको स्वरूपेर स्थाने तोमा करीबे समर्पण है, भविष्यवाणी कर दी पहले ही नित्यानंद प्रभु ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के उनके हाथ में आपको सौंप देंगे चैतन्य महाप्रभु भविष्य में। छुट्टी अंतरंग भृत्य बोली राखी वे चरणे, और आप उनके अंतरंग भक्त बन जाओगे। निश्चिंत है यह आपन भवने अचिर अचिर निर्विघ्न पावे चैतन्य चरणे। अभी आप निश्चिंत होकर घर जाओ, अभी नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए। हम अगर नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो कहते हैं, तो क्या होता है, निर्विघ्न पावे चैतन्य चरणे, बिना किसी विघ्न से हम चैतन्य महाप्रभु को पा सकते हैं। तो ये हुई उनकी कृपा, इनकी कृपा को याद कर कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई मधाई होते मुईशे पापिष्ठ, पुरीशेर किट होते मुईशे लविष्ठ। कहते कि मैं तो जगाई मधाई से भी पतित हूं। कहते मोर नाम सुने यही तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय यही तार पाप होय। मैं इतना पतित हूं कि मेरा नाम कोई सुनेगा तो उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, और मेरा नाम अगर कोई लेगा तो उसका पाप होगा। तो ऐसे में निर्घृण ऐसे पतित मेरा कौन उद्धार कर सकता है। एमोन निर्घृण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। एक नित्यानंद प्रभु छोड़ के मेरा कौन उद्धार कर सकता है। तो क्यों उद्धार करेंगे, आपका क्यों उद्धार करेंगे। बोले प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किचु ना करे विचार। बोलते महाप्रभु प्रेमे मत, प्रेम में क्या है, वो प्रेम में पिए हुए हैं, मदिरा मदाति मत्ता, हरि रस मदिरा मदाति मत्ता। तो वो ये जानते नहीं सामने कौन है। तो मेरे ख्याल से 5 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, ठीक है। तो मैं तो फिर लास्ट में इतना बताएंगे कि नित्यानंद प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। ये नित्यानंदाष्टकम प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, और कोई लोग कहते वृंदावन दास ठाकुर ने जी ने लिखा है। तो हाँ, दोनों महान आचार्य हैं जिन्होंने भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो उसमें लिखते हैं यथेष्टम रे भ्राता, नित्यानंद प्रभु सारे जीवों को कहते हैं, हम सबको कह रहे हैं यथेष्टम रे भ्राता, हमको कह रहे हैं ओ भाई आप क्या करो। यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वान मनीषम, आप हरि नाम का जप सतत करो और कीर्तन सतत किया करो। अगर ये आपने किया तो क्या होगा, तो वहां संसाराम बुद्धितरण दायो मई लगे, तब आपका बेड़ा कैसे पार करना है इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर लग गया। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ हरिनाम संकीर्तन करने का, और मैं क्या करूंगा, मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इदम बाहु स्फोटे रटति रटयन्य प्रतिगृहम भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। जो ये श्रवण कीर्तन स्मरण आत्मिका नवविधा भक्ति है, उसके वृक्ष के मूल कौन है, नित्यानंद प्रभु। वो स्वयं गारंटी दे रहे हैं, 1 साल की गारंटी, 5 साल की गारंटी, ऐसा नहीं, आजन्म गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हरिनाम सतत लेते हो तो मेरी जिम्मेदारी आपका उद्धार मैं करूंगा करके। तो जैसे हम ये हमको मानना चाहिए नित्यानंद प्रभु का कहना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, डॉक्टर है और हम मरीज हैं। तो डॉक्टर कहते हैं अभी ऐसा करो, अभी ऐसा पलट जाओ, मैं तुमको इंजेक्शन दूंगा, तो हमको ऐसा नहीं करना, नहीं 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 मेरे को दर्द होगा, ये और कुछ करो, ऐसा नहीं। जो जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे हमको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर अपना काम करेंगे। अभी ये दवाई ले लो, ये खाना तला हुआ, ये सब छाना बंद कर दो, तो हमें ये नहीं पूछना, अरे नहीं नहीं क्यों, ऐसा क्यों, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो नहीं, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे। तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, MD मैड मैन, मैड इन कृष्णास डिवोशन, तो वो कह रहे हैं कि ये औषधि ले लो, तो हमको भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये औषधि जो नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं उनको हम जितना ज़्यादा हो सके ग्रहण करना चाहिए। और आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पायते नहीं, हाँ दृढ़ करी धर निताय पाए। सो नित्यानंद प्रभु के चरण हमेशा हमारे हृदय में स्मरण रहे, और उनके जो प्रतिनिधि हैं गुरु उनके प्रति सदा आदर भाव और आज्ञा धारण करने का भाव हमेशा हमारे हृदय में रहे। जय श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, श्री निताय गौर चंद्र भगवान की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
जयो नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम जयो गौर निताय गौर।